अरुणिमा अपने घर के सोफे पर बैठी थी। हैरानी से उसने अपने सामने खड़े नीरज, जूली और रोजी को देखा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो हैरानी से नीरज की ओर देखती है, जो उसकी ओर एक दवाई बढ़ाते हुए कहता है, मैडम प्लीज आप इसे खा लीजिए, इसे आपका हैंगओवर उतर जाएगा। अरुणिमा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। उसका हाथ उंगलियों के निशान से लाल हो चुका था। उसकी कलाई पर उंगलियों के गहरे निशान थे और ये साड़ी भी वैसी नहीं थी जैसी वो कल रात पहनकर गई थी। उसने कल रात साड़ी सलीके से पहनी थी, लेकिन अब ये साड़ी अस्त व्यस्त होकर बस उसके बदन पर लिपटी हुई थी। अचानक अरुणिमा की धड़कनें तेज हो गईं और वो डरते हुए उन लोगों को देखने लगी। उसे डरा हुआ देखकर नीरज धीरे से पूछता है, मैडम क्या आपको कुछ याद है? आपको कौन कमरे में लेकर गया था और आपके साथ क्या हुआ है? क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? अरुणिमा डरते हुए नीरज से सवाल करने लगी। नीरज उसकी घबराहट देखकर पहचान गया कि अरुणिमा को नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं है। नीरज ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, मैडम आपको कोई नशीली चीज दी गई थी जिसकी वजह से आप बेसुध हो गई थीं। उसके बाद कोई आपको आपके कमरे में ले गया और फिर आपके साथ कुछ अजीब तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं। इसकी वजह से बॉस की इमेज बहुत खराब हुई है। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अच्छी तरह से जानती थी कि आस्तिक के लिए उसकी प्रतिष्ठा कितनी मायने रखती है। उसने कई बार घर के नौकरों से सुना था कि अगर कोई आस्तिक की प्रतिष्ठा और छवि को खराब करना चाहता है तो आस्तिक उस इंसान को जान से मार देता है, चाहे वो इंसान आस्तिक के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। यही सोच सोचकर अरुणिमा का शरीर जकड़ने लगा था। वो डरते हुए नीरज की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसे इतना डर लग रहा था कि वो आस्तिक का सामना करने से बेहतर अपनी जान दे दे। वो डरते हुए नीरज से पूछती है, क्या आस्तिक ने वो फुटेज देखी है? जी मैडम, सिर्फ बॉस ने नहीं, कल रात पार्टी में सबने वो फोटोज देख ली हैं। अरुणिमा की धड़कनें अचानक से रुकने को हो गई थीं। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसे दिखाया गया था जैसे वो कोई वेश्या हो। ये सिर्फ आस्तिक का नाम खराब नहीं कर रहा था, बल्कि अरुणिमा की गरिमा को भी चोट पहुंचा रहा था। लेकिन नीरज ने अरुणिमा को पूरी बात समझाते हुए कहा, मैडम उस फुटेज को किसी ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। वैसे बॉस इसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे इंटरनेट पर किसने पोस्ट किया। कुछ ही घंटों में ये चीज इंटरनेट से हटा दी जाएगी। अरुणिमा की सांसें तेज हो रही थीं। वो अचानक हिचकियां लेने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और उसका दिल इतनी बुरी तरह से धड़क रहा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। नीरज, जूली और रोजी उसे ऐसे देखकर घबरा गए थे। रोजी ने जल्दी से कहा, मैडम क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? रोजी भागते हुए किचन में गई और एक गिलास पानी लाकर अरुणिमा को दिया। अरुणिमा कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उठाती है और उसे पीने लगती है, लेकिन वो पानी पी कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। वो याद करने की कोशिश करती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो आस्तिक के कमरे में गई थी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसे ये तक याद नहीं आ रहा था कि कमरे में किसके साथ थी और उसके साथ क्या हुआ। जैसा कि नीरज ने बताया, उसके मुताबिक सिर्फ अरुणिमा के चरित्र पर ही उंगली नहीं उठाई गई थी, बल्कि रायचंद परिवार भी अपमानित हुआ था। अरुणिमा घबराते हुए पानी पी ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। ब्लैक पैंट और शर्ट में आस्तिक अपनी बाजुएं फोल्ड किए हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे, जैसे वो अभी सोकर उठा हो। आस्तिक को देखकर अरुणिमा का डर और ज्यादा बढ़ गया। वो घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अरुणिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक गुस्से में है या नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पर नाराजगी के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे हमेशा दूसरों के सामने रहता है। आस्तिक के पास आकर आस्तिक उसे देखते हुए कहता है, ठीक हो? लेकिन अरुणिमा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो आस्तिक के सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि इस वक्त यहाँ से कहीं भाग जाए। अरुणिमा घबराते हुए हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन उसी वक्त आस्तिक ने अपने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें याद होगा कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था, किसके साथ थी तुम कल रात कमरे में। अरुणिमा के हाथों से पानी का ग्लास छूट जाता है और वो एकदम डर से कांप जाती है। वो जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा की कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। अरुणिमा एकदम डर जाती है। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को पकड़ने की कोशिश करती है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन आस्तिक के सामने वो सब चीजें सिर्फ खिलौने जैसी थीं। इसके अलावा सारे नौकरों ने अपना सिर झुका लिया था और नीरज भी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा था। रास्ते में जो भी नौकर आ रहे थे, वे आस्तिक को गुस्से में आता देख चुपचाप साइड हो जा रहे थे और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रहे थे। उनके लिए ये दृश्य जैसे था ही नहीं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी और वो था उनके मालिक का हुक्म। आस्तिक सीधे अरुणिमा को कमरे में ले गया और अगले ही पल उसे ले जाकर बिस्तर पर धकेल दिया। अरुणिमा संभाल नहीं पाई और अंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। इसी के साथ उसकी साड़ी का आंचल फिर से उसके सीने से सरक कर नीचे जमीन पर बिखर गया।